تفسیر سورة الحج آیت نمبر 38 سے 41 تک. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چار آیات مدنی آیات ہیں. یہاں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت کا ذکر ہے. یہ قطعہ فی سبیل اللہ کے بارے میں پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی, اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی مدافعت کرنے کی صرف اجازت دی ہے. پھر بعد میں سورت بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دیا گیا. سورت البقرہ آیت نمبر 190, 191, اور اسی طرح 193, پھر آیت نمبر 216 اور 244. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ حالات تھے کہ ہجرت کے بعد جب پہلی مرتبہ حج کا موسم آیا تو مہاجرین اور انصار مدینہ دونوں جو تھے یہ اس بات پر بہت اداس تھے کہ وہ حج کی نعمت سے محروم کر دیے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے صحابہ کو لے کر جب آپ گئے تو اہل مکہ نے آپ کو جو ہے وہ عمرے سے روک دیا, زبردستی جو ہے وہ حرم کی زیارت کا راستہ بند کر دیا. تو اب اس بات پر بھی مسلمانوں کے دل جو تھے وہ بڑے ہی زخمی تھے. مسلمان اس ظلم پر بڑے ہی اداس تھے کہ ایک طرف تو ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور اب دوسری طرف جو ہے ان کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ کعبے کی تعمیر اور حج اور قربانی, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے, اور جاہلیت نے جو ہے یعنی اہل مکہ نے مشرکین نے جاہلیت کی وجہ سے ان کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا کریں کہ اگر کافر جو ہیں انہیں ستائیں, ان پر حملہ آور ہوں, تو مسلمان اپنی مدافعت کر سکتے ہیں. یدافعو, دال فا عین اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کو ہٹانا, دور کرنا. اور جب جو ہے وہ مدافعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو باتیں اور شامل ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی دشمن طاقتور ہے اور حملہ کر رہا ہے تو مدافعت کرنے والا اسی طاقت سے اس کا مقابلہ کرے, اس حملے کو روکے. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اب مقابلہ کرنے والا بس ایسا نہیں کرتا کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ حملے کو روکتا ہے, بلکہ کیا کہ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو وہ بھی حملے کو اتنی ہی دفعہ جو ہے وہ روکتا ہے, تو اس کو مدافعت کہتے ہیں. اب یہاں پر مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے, تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان کبھی اکیلے نہیں ہوتے, بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے. اللہ ان کی تائید کرتا ہے, ان کی حمایت کرتا ہے, اور دشمن کی جو چالیں ہیں ان کو ناکام کر دیتا ہے. تو فرمایا ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ جو ہے وہ مشرکین کے غلبے کو, ان کے ستانے کو ایمان لانے والوں سے جو ہے وہ ہٹا دے گا. اللہ ان مسلمانوں کی مدافعت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے. اور ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, وہ پسند نہیں کرتا, وہ ناراض ہے, وہ ایسے لوگوں سے ناراض ہے جو کفر کرنے والے ہیں نا. کل خوان, خوان جو ہے خا و نون اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے دغا کرنا, غداری کرنا, عہد کو توڑنا, خیانت کرنا. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ناراض ہیں کس سے؟ دغا باز لوگوں سے. کفور, کفر کرنے والے. تو خوان اور کفور جو ہیں یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کل کل جو ہے یہ جو یہاں پر آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے, یعنی خوان اور کفور کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ ہر ایسا شخص جو کہ جو ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑے. مراد کیا ہے کہ اب مکہ والے حرم کے پاس بان تھے, اب حرم کو ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے تعمیر کیا تھا, تو اہل مکہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے سے نہ روکتے, وہاں پہ شرک نہ کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ناشکری کی, انہوں نے مذہبی پیشوائی کا حق ادا نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جو حرم کی سعادت دی اور حرم کی مذہبی پیشوائی عطا کی, تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس نعمت کے شکر گزار ہوتے اور اس نعمت کی قدر کرتے اور لوگوں کو عمرہ, طواف, رکوع, سجود اور اللہ کی عبادت کے لیے حرم کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک طرف وہاں پہ شرک کرنے لگے, اور دوسرا جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی امانت میں خیانت کی, ابراہیمی امانت کا انہوں نے حق ادا نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اذن جو ہے اس کے معنی ہے اجازت دے دی گئی, للذین ان لوگوں کے لیے, کہ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی مسلطیں ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اذن للذین, اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو, یقاتلون بانہم ظلموا. یقاتلون, یقاتلون جو ہے اس کے معنی ہے کہ لڑتے ہیں. تو للذین کہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے, یعنی مسلمانوں کے لیے اجازت ہے, یقاتلون کہ جن سے لڑتے ہیں کون, کافر لڑتے ہیں. تو جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی, بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو جہاد کی اجازت دی گئی اس کے دو مقصد بتائے جا رہے ہیں. اس میں ایک مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا تحفظ کرنے کی اور جنگ کرنے کی اجازت ہے. اور نمبر دو, مسلمان جو ہیں وہ مظلومیت ہے, مظلوم ہے, مسلمان مظلوم ہیں, تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی. کیونکہ اگر مظلوم جو ہے ان کو اجازت نہ دی جائے تو دنیا میں جو ہے جو کمزور لوگ ہیں ان کو پھر طاقتور لوگ جینے نہیں دیں گے, اللہ کی زمین فساد سے بھر جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے, اور باطل اور کفر اور شرک جو ہے اس کو مٹایا جائے. اور اگر ایسا نہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ دنیا میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہے گی. تو اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اور کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور اللہ یقیناً ان کی مدد, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ مدافعت کرنے والا ہے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. تو اس کے معنی ہیں کہ جس کی مدد پر اللہ قدرت رکھتا ہو, جس کا ساتھ اللہ دے, دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو شکست نہیں دے سکتی. جیسے آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے مسلمانوں نے جو نہتھے تھے انہوں نے جو ہے وہ جدید اسلحے کا مقابلہ جو ہے وہ پتھروں سے کیا, تو کیسے ایک سپر طاقت جو تھی وہ پاش پاش ہوگی جو رشیا کی سپر طاقت تھی. تو یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. لا قدیر لام بھی آیا ہے اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے. फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुसलमानों को जो है वो अपनी मदाफियत के लिए जंग की इजाजत का जिक्र है, बल्कि साथ ही अब देखें जिहाद का हुक्म भी दिया गया। और अब यहाँ पर ये आयत नंबर 40 में आप देखेंगी तो अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि मुसलमानों को आखिर उनका कसूर क्या था कि जिसकी वजह से उनको हिजरत पर जो है वो मजबूर कर दिया गया। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने घरों से जो है वो निकाल दिए गए। उखरिजू निकाल दिए गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, बगैर हक़िन ना हक, यानी बगैर किसी वजह के जो है ये अपने घरों से निकाल दिए गए। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत जो है हिजरत के बाद नाजिल हुई और उनका कसूर क्या था, इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है। आप देखें हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो, उनका क्या कसूर था, वो अहद अहद का नारा लगाते थे और मक्का की तपती हुई गलियों पे, तपती हुई रेत पर, दहकते कोयलों पर उनको लिटाया जाता था। और आप देखें कि लड़कों को, चंद रोबाश लोगों को उनके पीछे लगा दिया जाता था और वो कहते थे कि अहले मक्का के तुम अहद अहद कहना जो है वो छोड़ दो तो हम जो है वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ने कहते थे कि मैं जो है वो कलमा तैयबा यानी एक अल्लाह की इबादत जो है वो करना नहीं छोड़ूंगा। तो मुसलमान जो है उनका कसूर क्या था कि जिस वजह से उनको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ने जब हिजरत करने लगे तो कुफारे कुरैश ने उनसे कहा कि तुम मक्का में खाली हाथ आए थे, अब खूब मालदार हो गए हो, अगर तुम यहां से हिजरत करके जाना चाहते हो तो खाली हाथ ही जा सकते हो, अपना माल साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये रूम से आए हुए थे ना। अब इन्होंने मक्का में रहते हुए जितना कुछ भी कमाया था अपने हाथ की मेहनत से कमाया था, किसी का दिया हुआ तो नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना सारा माल, अपना घर जो है वो जालिमों के हवाले कर दिया और दामन झाड़ कर खड़े हो गए। उनके तन पर कपड़ों के सिवा कुछ भी ना था। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जो है ये मेरा माल और मेरा घर मुबारक और मुझे मदीना का सफर मुबारक। अब आप देख लें कि जैसे बाहर की दुनिया में आप लोग भी आए हुए हैं अपने अपने घरों को, अपने अपने इलाकों और ममालिक को छोड़कर, और जिंदगी भर की कमाई अगर आपसे कोई कहे कि आप तो यहाँ पे खाली हाथ आए थे, आपके पास तो कुछ नहीं था, आप तो बड़े ही गरीब लोग थे, तो आप यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते, तो क्या गुजरेगी इंसान पर ना। लेकिन सहाबा ने ऐसे जो फैसले थे और ऐसे जो सौदे थे वो बड़ी खुशी से किए। क्यों, उनको किस चीज की कीमत चुकानी पड़ रही थी, अय यकूलू रब्बुनल्लाह, तो वो कहते थे कि हमारा रब जो है वो अल्लाह है। फिर आप देखिए कि एक और वाक्य हमें मिलता है, ये हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अनहा और इनके शोहर अबू सलमा रजी अल्लाह अनहो का है। वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अनहा और उनके शोहर अबू सलमा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर हिजरत के लिए निकले, तो उम्मे सलमा के रजी अल्लाह अनहा के जो घर वाले थे यानी उनके खानदान वाले वो थे बनी मुगीरा, उन्होंने रास्ता रोक लिया और अबू सलमा से कहा कि तुम्हारा जहां जी चाहे चले जाओ मगर हमारी लड़की को साथ नहीं ले जा सकते। अब वो मजबूरन बीवी को छोड़कर चले गए, अब हिजरत कर ली, बीवी को छोड़ गए। अब दूसरी तरफ जो है अभी थोड़ा और आगे गए तो हजरत जो अबू सलमा थे उनके खानदान वाले आगे आ गए, वो थे बनी अब्दुल असद वाले। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा हमारे हवाले करो, ये हमारे कबीले का है तो इसे हमारे हवाले करो। और आपको पता है कबायली निजाम था और कबायली निजाम बड़ा ही जो था वो गलबा रखने वाला था, तो इस तरह शौहर से पहले बीवी छीन ली गई और उसके बाद जो है बच्चा भी ले लिया गया माँ से भी और बाप से भी। 1 साल तक हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बच्चे और शोहर के गम में तड़पती रही। आखिर बड़ी मुसीबत से अपने बच्चे को हासिल करके वो मक्का इस हाल में निकली कि अकेली औरत गोद में बच्चा लिए ऊंट पर सवार थी और उन रास्तों से जा रही थी जहां से जो है वो काफले असलहे के साथ जाते हुए भी गुजरते हुए डरते थे, लेकिन तौहीद के लिए अल्लाह के लिए उन्होंने है ये कुर्बानियां की। फिर इसी तरह एक तीसरा वाक्या मैं आपको हिजरत का सुनाना चाहती हूँ। ये थे अय्याश, अय्याश बिन रबिया, अबू जहल के माँ जाए भाई थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना पहुंच गए। पीछे पीछे अबू जहल अपने एक भाई को साथ लेकर जा पहुंचा और बात बनाई कि अम्मी ने कसम खा ली है कि जब तक अय्याश की सूरत ना देख लूंगी ना धूप से साय में जाऊंगी और ना सर में कंघी करूंगी, इसलिए बस तुम चलकर उन्हें सूरत दिखा दो, शक्ल दिखाओ फिर वापस आ जाना। तो अब आप देखें कि अबू जहल जो है वो अपने एक और भाई को लेकर जो है वो जाता है ताकि अय्याश बिन रबिया को जो है वो वापस लेकर आए और झूठ बोलता है। और अब क्या है कि वो बेचारे माँ की मोहब्बत में वापस आते हैं और रास्ते में दोनों भाई उनको कैद कर लेते हैं। मक्के में उन्हें इस तरह लेकर दाखिल होते हैं कि वो रस्सियों में जकड़े हुए थे और वो दोनों भाई पुकारते जा रहे थे कि अहले मक्का अपने अपने नालायक लौंडों को यूं सीधा करो जिस तरह हमने किया है। बहुत मुद्दत तक ये बेचारे कैद रहे जो अय्याश बिन रबिया थे और आखिर एक जानबाज मुसलमान इनको निकाल लाने में कामयाब हुआ। तो इससे क्या बात पता चलती है कि उनका कसूर क्या था कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। तो सिर्फ मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी हैं और आप हिजरत की कहानी देखें तो ये भरी पड़ी है और इस तरह आप फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखें कि कैसे बेघर किए जाते हैं, कश्मीर के मुसलमानों को देखें, अफगानिस्तान के मुसलमानों को देखें, आप इंडिया के मुसलमानों को देखें यानी पाकिस्तान में जो हिजरत करके आए, और यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी शान के सदके जाएं कि मुसलमानों ने अल्लाह के रास्ते में कैसी कैसी अजियतें और तकलीफें जो है वो बर्दाश्त की हैं। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वजह से मुसलमानों को जो है वो हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। वलौला दफ़ुल्लाह अन्नासा बादहुम बिबादिन, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए से दफा ना करता रहता और एक दूसरे के जरिए से अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से हटाता ना रहता तो क्या होता, लहुद्दीमत, तो अलबत्ता जो है वो गिरा दिए जाते। तो हा दाल मीम जो है इसके रूट है और मानी है इमारत या दीवार का या किसी तामीर का गिरा देना या उसका जो है वो गिरना। तो फरमाया जा रहा है कि फिर जो है गिरा दिए जाते, यानी क्या होता कि लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करते, लोग एक दूसरे पर ज्याती करते और फिर गिरा दिए जाते। क्या चीज, नंबर 1 सवामेउ, इसका रूट है स्वाद मीम आइन, इबादत गाह, राहिबों की मखसूस इबादत गाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका वाहिद है सौमा, यहाँ पे राहिब, तारिकुद्दुनिया, सन्यासी, फकीर किस्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। और फिर इसके बाद है दूसरा लफ्ज व बिया उन, बा या आइन इसका रूट है, बिया तुन जो है वो वाहिद है और बिया उन इसकी जमा है और इसके मानी है ईसाइयों की इबादत गाहें या गिरजे। तीसरा लफ्ज है वह सलावातुन, सलावातुन जो है ये यहूदियों की इबादत गाह को कहते हैं और सलात की जमा है, यहूदियों के इबादत गाह का नाम है जहां पे वो नमाज वगैरह जो है वो पढ़ते हैं। वह मसाजिदू, और मस्जिदें जहां पे सजदा किया जाता है मुसलमानों की इबादत गाहें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर जो है वो इबादत गाहों का जिक्र किया है, फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला मजलूम की मदद ना करता, तो अगर अल्लाह ताला जो गलबा रखता है, ताकत रखता है, अगर अल्लाह जो है वो एक के हाथ को दूसरे के हाथ के जरिए घटाता ना रहता, क्योंकि अहले हक को अहले बातिल पर जो है क्या होता है, अल्लाह ताला वक्तन फक्तन जो है वो गालिब करता रहता है। और अगर ऐसा ना होता तो ये सारी जो इबादत गाहें थी ये गिरा दी जाती, जिसमें खानकाहें हैं, गिरजे हैं, और यहूदियों की इबादत गाहें हैं और मस्जिदें। और ये इबादत गाहें कैसी हैं, यूज करू फी हस्मुल्लाही कसीरा, कि इनमें अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है। तो ये सारी जो इबादत गाहें हैं इनका मकसद क्या है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। फिर फरमाया कि वला यंसुरन अल्लाहु मन यंसुरू, अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करेगा जो इसकी मदद करेंगे। यहाँ पे ये बड़ी ही खास बात है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह किन लोगों की मदद करता है, जो अल्लाह की मदद करते हैं। तो अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। तो अल्लाह की मदद करने का मतलब क्या है कि अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया जाए, अल्लाह के दीन को कायम किया जाए, शर की जगह खैर को फरोग देने की कोशिश की जाए। तो नेकी को फैलाना, बदी को रोकना, ये है दरअसल अल्लाह की मदद करना। और जो लोग अल्लाह की मदद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है क्या करते हैं कि अल्लाह उनकी मदद करता है। इन अल्लाह ला कवीयुन अजीज, और बेशक अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात जो हैं वो नुमाया करके सामने रखी गई हैं, और वो क्या है कि अल्लाह जो है वो कवी भी है और जबरदस्त भी है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अल्लाह के पास बड़ा ही इकतदार है, कुव्वत है, गलबा है, और वो जिसको चाहे कुव्वत और गलबा अता करे और कुव्वत और गलबे के जरिए से उसकी मदद करे, और इस तरह जो है वो जो मजलूम है उसकी मदद करे। और आपको याद होगा कि आप देखें कि बाज़ औक़ात जब एक कौम जो है या एक मुल्क जो है वो जब हद से बढ़ता है, हद से निकलता है, तो अल्लाह वैसे ही किसी कौम के जरिए से उसके जोर को खत्म कर देता है। जैसे जो है वो 80 के दहाई में, 1980 में आप देखें कि रूस और फिर जो है वो अमेरिका, दो सुपर ताकतें थी। तो अब ये कि अफगानिस्तान पर जब हमला किया रूस ने, तो अल्लाह ताला ने एक और सुपर ताकत जैसे अमेरिका जो है वो उसके जरिए से रशिया के जोर को जो है वो खत्म किया। तो जब भी कोई जो है वो अपने आप को बड़ा समझता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल में सुपर ताकत जो है वो मैं हूं। और हकीकत भी यही है कि जब कोई कौम ज्यादती करती है, जब कोई फर्द ज्यादती करता है, तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि फिर अल्लाह ताला जो है उसके जोर को, उसकी कुव्वत को जो है वो खत्म कर देते हैं। तो किसी ग्रोह के इकतदार को अल्लाह ताला किसी और ग्रोह के इकतदार के जरिए जो है वो खत्म कर देता है, जिसमें रूस और अमेरिका की मिसाल हो सकती है। इसी तरह आप देखें बर्तानिया की मिसाल भी है, जंगेजीम अव्वल, जंगेजीम दोम को आप याद करें। तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को पसंद नहीं करता कि दुनिया में जो है वो लोग ज्यादती करें। तो यहाँ पे ज्यादती का जिक्र हो रहा है अहले मक्का की, कि अहले मक्का जो है उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है वो ज्यादती की है। अब आप देखिए कि आयत नंबर 41 में फरमाया, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो इकतदार दे, तो उसमें जो है इकतदार जब अल्लाह देगा तो उसका मकसद क्या होगा कि मुसलमानों को अगर जमीन में इकतदार मिल जाए तो फिर उसका मकसद क्या है, फिर मुसलमान क्या करेंगे। फरमाया अल्लादीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्दी, ये वो लोग हैं कि जिन्हें अगर हम जमीन में इकतदार दें। मुफस्सरीन कहते हैं कि अल अर्द से मुराद जो है ये मक्का की सरजमीन है, और वैसे कोई भी जमीन हो सकती है। तो इक्तदा मक्कन्नाहुम, इसके मानी है जैसे मीम काफ नून ही इसका रूट है, और इसके मानी है कि अगर किसी को अल्लाह ताला जो है वो इक्तदार दे दे या हुकूमत दे दे तो वो क्या करेंगे। अब यहाँ पे इस्लामी हुकूमत के मकासिद बताए जा रहे हैं। तो पहला काम वो ये करेंगे, नंबर एक अकामुस सलाता, कि वो नमाज को कायम करेंगे। और आपको पता है कायम करने में उसके जो है वो अरकान, वाजिबात, शराइत, सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो पहली चीज क्या है कि वो नमाज को कायम करेंगे। और दूसरी बात क्या है, वह आता वो ज़कात कि वो ज़कात को अदा करेंगे। तो नमाज और ज़कात जो है ये एक जो है वो जिस्मानी इबादत है, एक जो है वो माली इबादत है, और नमाज और ज़कात की अहमियत का आपको अंदाज़ा ही है। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले इनका जिक्र किया गया है। और अगर कोई नमाज और ज़कात को कायम कर, अगर कोई नमाज और जकात को कायम करता है, तो बाकी दिन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर उसकी तरफ लोग जो है वो आने लगते हैं। तीसरी बात कही, वह तीसरी बात कही, वह अमरु बिल मारूफी वनहौ अनिल मुनकर, तो मारूफ का हुक्म देंगे और नंबर चार और मुनकर से मना करेंगे। इसके मानी क्या है कि वो मारूफ का हुक्म देंगे और मुनकर से जो है वो मना करेंगे। तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह की जमीन पर जो है वो जहां भी जो है वो बुराई होती भी देखेंगे तो उसको जो है वो रोकेंगे, और जो अल्लाह को काम पसंद है, जो मारूफ काम है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, उसको जो है वो उसका वो हुक्म देंगे। तो यहां पर इस्लामी हुकूमत के चार बड़े मकासद जो है वो रखे गए हैं, और जो इस्लामी हुकूमत जो है वो इन मकासद को पूरा करेगी तो ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की मदद करेंगे। वला यंसुरन अल्लाहु मन यंसुरु। और आप जो हैं पीछे सूरत अल बकरा में, सूरत आल इमरान में पढ़ चुकी हैं कि नेकी का हुक्म देना और बदी से मना करना जो है इसके क्या मानी हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि इन आयात में मुसलमानों को बताया जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तुम्हें जो है वो इक्तदार देगा। अरब की सरजमीन में फिर मदीना है, फिर मक्का है, तो फिर इस्लामी हुकूमत को ये काम करना है। और खुल्फाए राशिदीन ने ये काम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। और अब आप देख लें कि 60, अब आप देखें कि 60 के करीब जो है वो इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, तो आप देखें कि क्या वो इन जो मकासिद हैं इनको वो पूरा करती हैं जो कि एक इस्लामी हुकूमत का मकसद बनता है। और अगर वो इनको पूरा नहीं करती तो फिर क्या है कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं, और जो अल्लाह की मदद नहीं करते तो फिर अल्लाह भी उनसे जो है वो नाराज हो जाता है। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि हर चीज का जो एंड है ना वो दरअसल अल्लाह के पास है। हर बात का जो मर्जे है वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तदबीर है। इसके मानी ये हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात का कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह के अहकाम और जो जाब्ते हैं उनसे कोई इनहराफ नहीं कर सकता। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये अल्लाह ही है, उसके पास ये ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक छोटे से जरा से बीज को एक तनावर दरख्त बना दे, जैसे कि इस्लाम, मुसलमान मजलूम थे, हिजरत पर मजबूर किए जा रहे थे, तो अल्लाह चाहेगा तो इनकी अजमत के डंके बजेंगे, अल्लाह चाहेगा तो इनको हुकूमत अता करेगा, और अल्लाह को जो है वो कोई रोक नहीं सकता। वलिल्लाही आकिबतुल उमूर, तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 42 से लेकर 52 तक, यहां पर اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے کچھ واقعات کو سامنے رکھا ہے بہت ہی مختصراً، اور انبیاء کرام کو جو جھٹلانے والا ہے، جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بتایا ہے۔ انبیاء کرام، اور انہوں نے دعوت کیا دی، ان کی قوموں نے جو ہے وہ کس طرح جھٹلایا، تو یہ بتانے کا مقصد، ان کی طرف مختصراً اشارہ کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دینا ہے۔ آیت نمبر 42 سورۃ الحج، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، فقط کذبت قبلہم، تو پس جو ہے جھٹلایا ان سے پہلوں نے بھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل مکہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے پہلے جھٹلایا جا چکا۔ کس نے کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، و آدن، اور جو ہے وہ قوم عاد نے جھٹلایا۔ عاد کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ و سمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ و قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا۔ و قوم لوط، اور قوم لوط نے بھی۔ و صحاب مدین، اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ و کذبا موسا، اور موسا بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ اہل مکہ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ کے ساتھ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سے پیغمبر جو ہے وہ اس سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ فاملیتو، پس میں نے ڈھیل دے دی۔ تو املیتو جو ہے یہ ڈھیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پھر میں نے ان کو مہلت دے دی، للکافرین، کافروں کو۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ جب جھٹلایا تو فوراً ان پر عذاب آ گیا، بلکہ ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا۔ اب کفار مکہ جو ہے اگر جھٹلا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ فوراً ان پر عذاب آ جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت گزر جاتی ہے، لوگ قومیں اسے فائدہ نہیں اٹھاتی، تو پھر ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير، اب دیکھ لو کہ میری نکیر جو تھی وہ کیسی تھی، میری پکڑ جو تھی وہ کتنی شدید تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نکیری تھا، یا گر چکا ہے، اور نکیر جو ہے اس لفظ کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ انجان ہونا، کسی کو پہچانا نہ جائے، اور دوسرا جو ہے اس میں کراہت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ اگر کوئی دیکھے تو پہچان بھی نہ سکے۔ کیوں؟ کہ ایسی روش تھی کہ ان پر جب اللہ کا عذاب جو ہے وہ آیا، اللہ کا غصہ جب ان پر بھڑکا، تو ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو کیا ہے کہ جیسے منکر نکیر کیسی پکڑ کرتے ہیں نا، منکر نکیر کا لفظ آپ اس سے بھی یاد رکھ سکتی ہیں، اور اسی طرح ویسے معروف انل منکر، معروف جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، اور منکر جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو یا جو صحیح چیز نہ ہو، تو برائیاں وغیرہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا فَقَئِ مِن قَرْيَةٍ، بس کتنی ہی جو تھی وہ بستیاں تھیں۔ تو فا پس کا جو ہے کتنی، اور ایو جو ہے وہ اس کا روٹ ہے، اور اسی سے یہ لفظ ہے این، اور مان ایو جو ہے کون سا، کتنی، فاقائین پس کتنی، یعنی بہت سی، من قریتن، بستیاں ہیں، اہلکناہا کے ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالماتن، اور وہ ظالم تھی، معنی کیا ہے، وہ کفر کرنے والی تھی، وہ شرک کرنے والی تھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والی تھی۔ فاہیا خاویتن، بس یہ گری پڑی ہیں، अब यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि बड़ी शानो शौकत रखने वाली और बड़ी तरक्की करने वाली तालीम और तहजीब से जो थी ये आशना थी, लेकिन अब इनका जवाल कैसा है, खावियतुन, खावो या जो है इसका मतलब क्या है कि अब वो उल्टी पड़ी हुई हैं। अला उरूशिहा, अर्श वाहिद है, उरूश इसकी जमा है, और अब वो अपनी छतों पर जो है वो उल्टी पड़ी हुई हैं, यानी अब उनकी छतें गिर चुकी हैं और वहां पे तबाही बर्बादी के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फिर फरमाया वह बेर मुअत्तलतिन, और बेर जो है यही इसका रूट है और कुएं को कहते हैं, और साथ ही कहा मुअत्तलतिन, और इसका रूट है ऐन तोय लाम, इसके मानी होते हैं जेवर का खाली होना, मजदूर का बेकार होना, नकारा के लिए भी आता है, जैसे आप कहती हैं कि ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, यानी अब ट्रैफिक नहीं चल रही ना, या आप कहती हैं स्कूल में तातीलात हो गई, तातीलात का लफ्ज भी इसी से निकला है, छुट्टियां हो गई, अब कोई काम नहीं कर रहे ना। तो अरबों के यहाँ कुआं और बस्ती तकरीबन एक ही मानी में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे किसी कबीले की बस्ती का नाम लेना हो तो कहते थे फलां कबीले का कुआं, और अगर अरबों के सामने ये कहा जाए कि फलां के कुएं जो हैं वो बेकार पड़े हुए हैं, इसके मानी ये होंगे कि फलां बस्तियां उजड़ी पड़ी हैं, क्यों कि कुआं जो था उससे वो पानी लेते थे, तो जब वहां पे कोई रहेगा ही नहीं तो कुएं तो बेकार हो जाएंगे ना, तो पानी कौन लेगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो बस्तियों को तबाह बर्बाद किया तो कितने ही कुएं हैं जो बेकार हैं, वकसरिम मशीद, और कितने ही महल हैं जो कि खंडर बन गए। तो कसर जो है काफ स्वादरा, बुलंद और पुख्ता इमारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मशीद जो है, मशीद का लफ्ज जो है इसका रूट शीन या दाल भी है, और बास कहते हैं कि शीन दाल, दाल भी, और इसके मानी है मशीद के मजबूत या बुलंद। तो जो बुलंद और मजबूत महल थे अब वो खंडर बन गए। न गोरे सिकंदर न है कसरे दारा, न गोरे सिकंदर न है कसरे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ये अजीमुशान जो कौमें थी झुटलाने के नतीजे में, इनकार करने के नतीजे में ये तबाह बर्बाद हो गई, अब इनका कहीं कोई निशान जो है वो नहीं नजर आता। तो अहले मक्का को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि तुम ये जो तबाहशुदा बस्तियां हैं, जब सफर करते हो शाम की तरफ जाते हो तो इनके जो खंडर हैं इनसे इबरत हासिल क्यों नहीं करते। अफलम यसीरु फिल अर्दी, क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं है। फतकूना लहुम कुलूबुन, के इनके दिल जो है वो हो जाते, या क़िलून बिहा, इनसे जो है वो अकल लेने वाले, इनसे इबरत लेने वाले। औ आज़ानुन, या इनके कान होते, यस्मऊन बिहा, कि वो सुनने वाले बनते। फ़इन्नहा ला तअमल अबसारु वलकिन तअमल क़ुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर, हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती मगर दिल अंधे हो जाते हैं जो कि सीनों में है। अब आप देखें कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अगर किसी के सीने में जो है वो महसूस करने वाला दिल हो, क्योंकि दिल के अंदर एहसासात जज्बात होते हैं, अगर किसी का जो दिमाग है अगर वो सोचने वाला है, और इसी तरह कान किसी बात को सुनते हैं तो उसको अपने सीने में महफूज कर लें, तो इंसान फिर क्या करता है कि वो इबरत हासिल करता है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो सोचने समझने की दावत दी है। कुरान का ये अंदाज है कि वो इंसान के जमीर जो है उसको जगाता है, गाफिल लोगों को जो है वो गफलत से बेदार करता है, और तवज्जो दिलाता है कि ये अल्लाह ने तुम्हें दिल, दिमाग, कान, आंखें, इनकी नेमत से नवाजा है, तो इनके जरिए तुम गौर व फिक्र करो और इबरत हासिल करो। तो लेकिन अफसोस के जो पहली कौमें थी उन्होंने ये जो आयत नंबर 46 है सूरत अल हज की, ये बहुत ही अहम आयत है इस एतबार से कि हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए कि हम अपने दिल, दिमाग और आंखों का और कानों का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या हम गौर व फिक्र करते हैं? क्या हम गौर व फिक्र करते हैं? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं ताकि हम इनका इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के बंदे बन सके। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 47, इसमें फरमाया वयस्ताजिलूना कबिल अजाबी, ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अहले मक्का कहते थे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो फिर अजाब क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि हम आपको झुठला रहे हैं तो फिर अल्लाह हम पर अजाब क्यों नहीं भेजता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। वले युखलिफल्लाहु वादा, अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। व इन यौमन इंद रब्बिका फअल्फ सनतिम मिम्मा तअदून, मगर तुम्हारे रब के हां का एक दिन तुम्हारी गिनती के हजार सालों के बराबर हुआ करता है। और अल्फ जो है हमजा लामफा, अल्फ हजार को कहते हैं, सौ को मिया कहते हैं, और सनतिन जो है ये साल के लिए आता है। तो इसके माने क्या है कि तुम्हारे तुम्हारे हां का जो है वो 1000 साल तुम्हारे हां के, अल्लाह के हां का एक दिन जो है वो बनता है। तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बात बता रहे हैं कि तुम्हारा हिसाब और मेरा हिसाब इसमें जो है बहुत ही फर्क है। जैसे इसके मानी ये हैं कि 1000 साल में इंसान जो काम करे अल्लाह एक दिन में वो काम कर सकता है, मगर अल्लाह करता वही है जो उसकी हिकमत और मसलहत के मुताबिक हो। तो तुम अजाब के लिए जल्दी मत मचाओ। फिर दूसरी बात इसके मानी ये हैं कि जब कयामत आएगी तो उसका एक दिन अपनी शिद्दत अपनी हौलनाकी के लिहाज से तुम्हारे 1000 सालों के बराबर होगा। तो फिर ऐसी मुसीबत को बुलाने के लिए तुम क्यों जल्दी मचाते हो? तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि लोगों का हिसाब और अल्लाह का हिसाब इसमें बड़ा फर्क है। यानी हमारी गिनती जो हम करते हैं और जो अल्लाह की काउंटिंग है इसमें आपस में कोई निस्बत नहीं है। तो मतलब तुम जो है वो अजाब के लिए जल्दी मचाना जो है वो छोड़ दो, और अल्लाह अपना वादा जो है वो पूरा करके रहेगा। वकाई मिन करियतिन अमलेतु लहा वहिया ज़ालिमतुन सुम्मा अखस्तुहा वइलैल मसीर। यहाँ पे तीन बातें की गई हैं। पहली चीज ये कि कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने पहले मोहलत दी। वकाई मिन करियतिन अमलेतु लहा, यानी बहुत सी बस्तियां हैं जिनको हमने पहले मोहलत दी। वो कैसी थी? नंबर दो, वही ज़ालिमतुन, और वो जुल्म करने वाली थी, कुफर और शिर्क और इनकार करने वाली। नंबर तीन, सुम्मा अखस्तुहा, जब मोहलत गुजर गई तो हमने उनको पकड़ लिया। फिर कैसा पकड़ा? बस फिर अल्लाह ताला कहते हैं, बार बार कुरान में कहते हैं कि फकैफ़ काना नकीर, फकैफ़ काना अजाबी व नकीर। तो यहाँ पे भी ये है कि हमने उनको पकड़ लिया। और चौथी बात, एक तो वो दुनिया की पकड़ थी ना, आखरत की पकड़ क्या है? वह इलैयल मसीर, और मेरी ही तरफ तुम सबको वापस लौट कर आना है। आयत नंबर 49 सूरत अल हज, कुल या अय्युहन नासु, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए, इन्नमा अना लकुम नज़ीरु मुबीन, कि मैं बुरा वक्त आने से पहले तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ, मुबीन, खुला साफ साफ तुम्हारे लिए खबरदार करने वाला हूँ। तुम्हारे लिए अजाब लाने वाला नहीं हूँ, मेरा काम क्या है कि मैं तुम्हारी नाफरमानियों पर तुम्हें जो है वो डराऊं, तुम्हारी शामत अमाल से तुम्हें खबरदार कर दूं। فالذين آمنوا وعملوا الصالحات رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف کفر کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا سخت پکڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی ڈیوٹی لوگوں پر عذاب لانا نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی تو لوگوں کو ڈرانا ہے عذاب سے اور خوشخبری دینا ہے جنت کی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایمان لانے والے اور عمل صالح رکھنے والوں کے لیے دو خوشخبریاں یہاں پر پیش کی ہیں، اور ایک ہے مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کی خطائیں کمزوریاں لغزشیں ان سے چشم پوشی کرے گا۔ اور رزق کریم، اس کے دو معنی ہیں، एक मानी तो यह है कि उनको उम्दा रिस्क दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है रिस्कोन करीम जो है इसकी सिर्फ जो है वो इस्तेमाल की गई है। अल्लाह उन्हें इज्जत वाली रोजी जो है वो अता करेगा, उम्दा रिस्क देगा, अच्छा रिस्क देगा। करम से याद रखें, जो कि अंगूर की बेल के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे इसके मानी है कि उनको इज्जत के साथ जो है वो रिज्क बिठा कर दिया जाएगा, बैठे बिठाए दिया जाएगा। क्योंकि आमतौर पे दुनिया में रिस्क के लिए आप देखें कि बड़ी मेहनत और मुशक्कत जो है वो की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है अल्लाह ताला इज्जत के साथ बिठा कर जो है जन्नत में मेवे फल उम्दा उम्दा नीमते जो है वो अता करेगा। अभी हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ दारुल ईमान का, तो उसमें मैं औरतों से पूछ रही थी कि आपकी पसंदीदा डिश क्या है। तो ज्यादातर औरतों ने ये कहा कि हमें ये पसंद है कि हमें बैठे बिठाए जो है वो खाना मिले ना, हमें करना ना पड़े। और एक औरत कहने लगी कि मुझे जहाज का खाना बड़ा पसंद है, जिस तरह से इहतमाम के साथ जो है वो पेश किया जाता है। अब आप देखें कि मतलब अगर हम ऐसी ख्वाहिशात को पाल लें तो फिर अपने मकसद जिंदगी को कैसे हासिल करेंगे। ये दुनिया जो है ये मेहनत की जगह है, मुशक्कत की जगह है। मन जद्दा वजादा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, काम करना है, मेहनत करनी है। दुनिया हासिल करने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो अपने गुनाहों की माफी के लिए, रब की रजा के लिए, जन्नत के लिए तो बड़ी मेहनत करनी है ना। उसमें अपने ऊपर तरस नहीं खाना, उसमें अपने आप को बिठाना नहीं है, उसमें लोगों से तवक्कुआत नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जैसे सास शादी करती है, जब मतलब औरत जब अपने बेटे को ब्याहती है, तो ब्याहने से पहले ही बड़ी उसकी आरजूएं और तमन्नाएं होती हैं कि मेरी बहू आएगी और फिर मैं बैठी होंगी तो फिर मुझे चाय देगी, तो फिर खाना देगी, तो घर की सफाई करेगी, और फिर जो है वो ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो अभी पिछले दिनों मेरी एक दो औरतों से बात हो रही थी, तो एक औरत कह रही थी कि मैं तो हार्ट पेशेंट हो गई हूँ। और मैंने कहा खैरियत, तो कहने लगी कि बस बड़ा कुछ सोचा था और हकीकत उससे बहुत ही मुख्तलिफ निकली, वो बस बहू और बेटा तो बस ऐसे ही लगता है कि घर में मेहमान की तरह है, और जो है बस वो आते हैं। और मैंने कहा तो आप तो जाहिर है कि आप ऐसा क्यों सोच रही, तो कहने लगी कि मैं सोच रही थी कि जब वो मतलब मैं खाना पकाऊंगी, मेरी हेल्प करेगी, खाना लगाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो बस सोच सोच कर अंदर ही अंदर अब मुझे जो है ना वो तकलीफ होने लगी है। इसी तरह एक और औरत कहने लगी, ये भी रोजे गुजरे, तो एक औरत कहने लगी कि मैंने तो मतलब बड़ा ही मेरा दिल उदास है। मैंने कहा खैरियत, तो कह रही थी कि अफ्तारी के वक्त मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी के लिए तो मशरूब और जूस और उसको ग्लास में देता है डालकर, और मेरी उसको नहीं होती कि भी माँ भी है इस तरह से। या एक औरत कहने लगी कि जो है वो सारी जिंदगी मैंने बच्चों को राइट दी, अपने बेटों को और सबको, और अब शादी हो गई तो अब मैं पीछे बैठती हूँ। एक दफा भी मेरे बेटे ने ये नहीं कहा कि माँ तू मेरे साथ फ्रंट सीट पर आगे बैठना, तो अपनी बीवी को आगे बिठाता है। अब आप देख लें कि अब ऐसे ही बहुत सी बातें आप अपने दिल में पाल लेती हैं और आप सोच लेती हैं, एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं, फिर नतीजा क्या निकलता है। हो सकता है यहाँ के बच्चों का थोड़ा अंदाज मिजाज भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है, उनको खिदमत करनी चाहिए, वालदैन की उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर वो नहीं भी करते, यानी अपने दिल के अंदर ऐसे ख्याली प्लाव और महल्लात और तसव्वुरात और ऐसी चीजें ना बांध लें कि जब वो आप शीश महल जब टूटे तो आप भी साथ ही धड़ाम से गिरें और घरों में लड़ाइयां झगड़े जो है वो होने लगे। तो बहरहाल बात हो रही थी ईमान लाने की और अमले सवाले करने की, तो उनके लिए मगफिरत है और फिर इज्जत की रोजी है। तो हमें तो हर वक्त ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, ना ये कि ख्वाहिशें तमन्नाएं करके अपने गुनाहों में इजाफा कर लें, लड़ झगड़ कर शिकवे शिकायतें करके अपने लिए डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, शुगर और मुख्तलिफ जो है वो मरीज बन जाए। और अगर आप अपनी जिंदगी का ये उसूल लेंगे कि मुझे किसी से तौक़ात नहीं रखनी, तो थोड़ा सा भी कोई आपके लिए करेगा, वो बेटा हो, बहू हो, शौहर हो, या औलाद हो, या दोस्त हो, आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और जब आप बहुत ज्यादा तौक़ात रखेंगी, तो फिर जब कोई नहीं करेगा, तो आपकी तबीयत ही शाकी और कंप्लेन करने वाली, शिकवा शिकायत करने वाली, और मसाइल का आप ही शिकार होंगी, आप खुद ही आप नुकसान उठाएंगी। तो अपनी सोचों के जावियों को बदलना है, और ये सोच लेना है कि दुनिया काम की जगह है, और फिर कब्र और फिर जन्नत जो है ये आराम की जगह है। फिर आयत नंबर 51 में फरमाया, वल्लज़ीना सअऊ फी आयातिना, और जो हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिशें करेंगे। मुआजिज़ीना का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और ऐन जीम ज़ा जो है इसके मानी होते हैं कि आजिज़ करना, किसी को नीचा दिखाना। तो जो हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए सही करेंगे, कोशिश करेंगे। सही का मतलब क्या होता है? दौड़ धूप करना, पूरी कोशिश करना, लपक कर कोशिश करना। उलाइका साबुल जहीम, और यही लोग हैं जो के दोजख के यार हैं, ये जहन्नुम के साथी हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है कि किस तरह से जो है वो अल्लाह के जो रसूल थे, किस तरह से शैतान उन्हें जो है वो तंग करता था। वमा अरसलना मिन कबलिक मिन रसूलिन, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले कोई भी जो रसूल भेजा, वला नबीन, और ना ही कोई नबी, यानी आपसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा ना नबी, इल्ला मगर ये, यानी जो भी रसूल और नबी भेजा तो उसके साथ ये मामला पेश आया, इजा तमन्ना अलक शैतानु फी उम्नियते, कि जब उसने तमन्ना की तो शैतान इसकी तमन्ना में दखल अंदाज हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पर तमन्ना जो है इसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और तमन्ना जो है इसका रूट है मीम नून या, मीम नून या इसका रूट है, और इसके मानी है, तमन्ना के मानी दो मानी बताए जाते हैं अरबी जबान में। एक तो वही जो कि उर्दू में है, किसी चीज की ख्वाहिश और आरजू करना, और दूसरे मानी जो है वो इसके तिलावत के हैं, तिलावत करना। तो तमन्ना को किरात तिलावत के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसके इसका ये मानी लिए जाए कि ख्वाहिश करना, आरजू करना, तो इसके मानी ये हैं कि नबी ने जो जब भी तमन्ना की, जब भी ख्वाहिश की, और आप देख लीजिए कि नबी की ख्वाहिश और तमन्ना क्या थी, हर पैगंबर की, नबी की क्या तमन्ना और ख्वाहिश थी कि लोग जो है वो दीन को कबूल करें, और दीन जो है वो तरक्की करें, दीन जो है वो आगे बढ़े। तो शैतान क्या करता है कि नबी की जो ख्वाहिश है उसमें दाखिल हो जाता है, उसमें शुभात पैदा करता है। और अगर आप यहाँ पे तिलावत के मानी लें, तो क्या है कि नबी ने जब कुरान को पेश किया तो शैतान ने लोगों के दिलों में शुबे डाले, मेन मेख निकाली, शैतान ने रुकावटें डाली, यानी तिलावत में मिलावट करके कोशिश को नाकाम किया। तो यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान जो है उसकी कोशिशें, कि सिर्फ आपके साथ ही शैतान की ये कोशिशें नहीं है कि शैतान जो है वो जब आप कुरान को पेश करते हैं, इजा तमन्ना, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, आप कुरान को पढ़ते हैं, तो अलक शैतानु फी उम्नियते ही, तो शैतान जो है वो आपकी तिलावत में खलल अंदाज होता है। क्या करता है? यानी आपने तिलावत की, आपने आयात सुनाई, शैतान ने साजिशों के जरिए लोगों के जहन में जो है वो शकूक और शुबहात डाल दिए। तो जितने भी पहले पैगंबर गुजरे हैं, शैतान उनके साथ भी जो है वो ये मामला करता रहा है, उनकी कोशिशों को भी नाकाम बनाने के लिए जो है वो कोशा रहा है। फयनसखुल्लाहुमा युल्की शैतानु, बस अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान की ऐसी कोशिशें जो थी उनको मनसूख कर दिया। फयनसखु, बस अल्लाह मिटा देता है, मा युल्की शैतानु, जो शैतान जो है वो डालता है, यानी शैतान जो शकूक और शुभात दिलों में डालता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मिटाता है। तो मा युहकिमुल्लाहु आयातिही, और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है, यानी शैतान के वसवसे, उसकी खलल अंदाजियां, उसके शुभात और इतराजात जो हैं अल्लाह दफा करता है। क्योंकि जैसे कुरान के बारे में भी जो है वो मैं आपके सामने दो तीन मिसालें रखती हूँ, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। जैसे एक मिसाल आप ये याद रखें कि हुर्रिमा अलैकुमुल मैता, जब ये आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों का और कुरान का मजाक उड़ाया गया। क्या कहकर मजाक उड़ाया? शैतान ने लोगों के दिल में ये शुबा डाला कि देखो अपना मारा हुआ तो हलाल है और अल्लाह का मारा हुआ ये हराम कहते हैं। फिर इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई कि इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, आप पीछे पड़ चुकी हैं कि बेशक तुम भी और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर वो सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तो अब जो है इस पर लोगों ने, शैतान ने जो है ये दिल में बात डाली कि हजरत मसीह, हजरत उजैर और फरिश्ते इसकी लोग इबादत करते हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि ये सब भी जहन्नुम में जाएंगे। तो फिर जो है ये बात बताई गई कि जिनकी मर्जी के बगैर अगर लोग उनकी इबादत करें तो वो तो नहीं जाएंगे ना। फिर इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई कि कलीमत अल्काह इला मरियम व रूह मिनहू, तो इस पर जो है शैतान ने लोगों को ये समझाया कि जब अल्लाह का कलमा है जो मरियम की तरफ अलका किया गया और अल्लाह की रूह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे मरियम की तरफ अलका किए गए, तो इसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। तो ये क्या है? ये शैतान के वसवसे और उसकी चालें और ऐसी और भी बहुत सी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह उनके वसवसों को मिटाता है और अपनी आयात को पुख्ता करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह अलीम और हकीम है। لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि शैतान की डाली हुई खराबी को जो है वो ताकि फितना बना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो शैतान के शुभात को मिटाता भी है। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह ऐसा क्यों करता है कि अपनी आयात को पुख्ता करता है और शैतान की खलल अंदाजियों को जो है वो मिटाता है, ताकि शैतान की डाली हुई खराबी जो है उसको फितना बना दे। लियजला, ताकि वो बना दे, मा युल्कि शैतानु, जो कुछ शैतान ने डाला है, फितनतन फितना, जैसे भी मैंने आपके सामने दो तीन मिसालें रखी, लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, उन लोगों के दिलों के लिए ये फितना बन जाता है जिनके दिलों में मर्ज है। किसका? निफाक का, कुफर का, शिर्क का। वल्कासियात कुलूबुहुम, और जिनके दिल जो है वो खोटे हैं, सख्त हैं। कासिया जो है काफ सीन वो इसका रूट है, और कासिया लफ्ज जो है ये सख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कसावा, ये लफ्ज पहले भी आप पढ़ चुके हैं सूरत अल बकरा में। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हक और बातिल की कश्मकश में शैतान के उठाए हुए फितने जो है अल्लाह उनको झाग की तरह बिठाता है, ईमान लाने वालों की बातों को इस्तेहकाम देता है, रसूल की बातों को लोगों के दिलों में इस्तेहकाम देता है, कुरान की बातों को लोगों के दिलों में इस्तेहकाम देता है, और अल्लाह के फैसलों में बड़ी हिकमत है, अलीम है, हकीम है। तो किन के दिल के अंदर एक फितना पैदा होता है? जिनके दिल के अंदर निफाक की बीमारी है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कुलूब ही मरद, उनसे मुराद मुनाफिक है, और कासियत कुलूबहुम से मुराद कुरैश और यहूद है, क्योंकि इन्हीं के बहम गुठ जोड़ से जो है वो ये कुरान और इस्लाम के लिए कोशिशें करते थे। व इन नज़्वालिमीन लफी शिक़ाक़िन बईद, और हकीकत यह है कि ये जालिम जो है ये दुश्मनी में हक से बहुत दूर निकल गए। शिकाक, शक जो है ये सख्त चीज के फटने के लिए इस्तेमाल होता है, शीन काफ काफ। तो इससे मुराद क्या है कि दिल फट जाते हैं, तो दिलों में क्या होता है? शिकाक, मुखालफत होती है, दुश्मनी होती है, बईद दूर, बहुत दूर। तो सारे ये जालिम हैं जो अल्लाह और अल्लाह की आयात जो हैं वो इनसे दूर निकल गए। तो इस मौके पर जरूरी है कि आप अपना जायजा लें, आप अपना मुहासबा करें कि कुरान की आयात के हवाले से आपका क्या मामला है, यानी मुहकमात जो हैं आप इनके पीछे चलती हैं या मुतशाबेहात के पीछे चलकर जो है फिर दिल के अंदर शकूक शुबहात जो है वो इतने चलते हैं, इतने आते हैं कि फिर उसकी वजह से जो है वो निफाक की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या फिर दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि फिर जो है इंसान अमल करना जो है वो छोड़ देता है। तो शैतान का काम है वसवसे डालना, शैतान का काम है हरबे इस्तेमाल करना, शकूक पैदा करना, लेकिन आपका काम क्या है कि अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह की जो आयात है, इसके जरिए से अपने दिलों को इस्तेहकाम देना, मुहकमात के पीछे चलना और जालिमीन में शामिल ना होना। अब आप देख लीजिए कि ये जो आयात हैं यहां से अब जो चल रही हैं आयत नंबर 53 से 57, अल्लाह ताला यहां पर यही बात बता रहे हैं कि शैतान के शुबहात मिटते जाते हैं और जो हक है वो फरोग पाता है। हक और बातिल की कश्मकश तो चलती रहेगी लेकिन हक हमेशा गालिब आएगा। फरमाया वले यालम الذين اوتوا العلم انه الحق من رب من ربك वले यालम और जान ले الذين वो लोग اوتوا العلم जिन्हें इल्म दिया गया है, तो इल्म वाले ये जान लेते हैं انه الحق من ربك कि कुरान आयात जो है ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, तो वो क्या करते हैं فَيُؤْمِنُوا بِهِ तो उस पर ईमान ले आते हैं। तो अब आप देखें कि कुरान जो है ये हमारे रब की तरफ से हक है, तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम शक ना करें, हम इस पर ईमान ले आए। यानी जो भी कुरान नबी ने पेश किया जो हमारे सामने आया ये हक है हमारे रब की तरफ से, फयोमिनु बिही, तो पहला काम क्या है कि वो उस पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं, सच समझते हैं। नंबर दो, फतुखबिता लहू कुलूबहुम, और उनके दिल उसके आगे झुक जाते हैं। आपने पीछे मुखबतीन जो है वो सिफ्त पड़ी थी ना, सिफात मुखबतीन की, खाबाता जो है ये नशेबी जमीन को कहते हैं, ऐसी जमीन को जो के झुकी हुई होती है, जो झुक जाती है, या ऐसी जमीन जो के नीची होती है। तो मुखबतीन जो है फिर ऐसे लोगों को कहते हैं जो अल्लाह की आयात को जब सुनते हैं तो वो उनके ये मुती हो जाते हैं, ऐसा शख्स जो अपने आप को हकीर समझता है। तो असल इस्लाम की रूह इखबात है कि इंसान अपना जाहिर ही नहीं बल्कि अपना दिल भी अपने परवरदिगार के आगे जो है वो झुका दे। तो उसके लिए जो है वो खबता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर भी खास तौर पर इस बात को नुमाया किया जा रहा है कि ये लोग जो है फतुखबिता लहू कुलूबहुम, के अब उनका दिल, उनका अंदर, उनका बातिन जो है वो अल्लाह के आगे जो है वो झुक जाता है। तो ये है मुखबतीन, ईमान लाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, अल्लाह के हुजूर रुजू करते हैं, खुशू करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, अपने शकूक और शुबहात को छोड़ देते हैं, यानी उनको हटाते हैं। फतुखबिता लहू कुलूबहुम, उनके दिल झुक जाते हैं। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि जब दिल नहीं झुकता तो इंसान का जाहिर भी नहीं झुकता, तो दिल जो है खुशू खुजू और लखबता दिल की वो कैफियत है कि जब इंसान का अंदर झुक जाए, अंदर जब झुकते हैं तो आपके देखेंगे आपके जिस्म पर रोंगटे खड़े होते हैं, आपकी आवाज पस्त हो जाती है, आपकी आंखें नीची हो जाती हैं। फतुखबिता लहू कुलूबहुम, तो क्या कर झुकाना है, अल्लाह के लिए दिलों को झुकाना है ताकि आवाजें झुके, नजरें झुके, जिस्म झुके और अल्लाह के मुती बन जाएं। व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीन आमनू इला सिरातिन मुस्तकीम, यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखा दिया करता है। तो ये जो शैतान की तरफ से बहुत से ख्याल आते हैं तो ये लोगों का इम्तहान लेने के लिए है। क्यों इम्तहान अल्लाह लेता है, ताकि पता चल जाए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, खोटा कौन है और खरा कौन। तो जो खरे होते हैं वो हक की दावत की तरफ खींचते हैं, खोटे जो है वो फिर उन्हीं बातों के अंदर जो है वो लग जाते हैं। फिर इसके बाद फरमाया वला यजालुल्लजीन कफरू فی مریت منہ حتی تاتیہم الساعت بغتتن او یاتیہم عذاب یوم اقیم. فرمایا کہ ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے. آپ کو پتہ ہے نا زا و لام اس کا مطلب ہوتا ہے زوال آنا, ٹل جانا. تو ولا یزالو نہیں ٹلیں گے, زوال نہیں آئے گا. معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے. اللہ زینا و لوگ کفارو جنہوں نے کفر کیا وہ کس میں رہیں گے؟ فی مریتن شک میں, میمرا یا اس کا روٹ ہے. تو ہمیشہ کفر کرنے والے, انکار کرنے والے شک میں ہی رہیں گے. منہو اس کی طرف سے, قرآن کی طرف سے, اللہ کے پیغام کی طرف سے. حتی تاتیہم الساعت یہاں تک کہ آ جائے گی سات گھڑی, اور مراد کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی. کہ یہاں تک ان پر جو ہے وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی, بختتن اچانک. تو اچانک ان پر جو ہے وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی. او یاتیہم عذاب و یوم اقیم, اور یا ان پر جو ہے وہ ایک منحوس دن کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے بڑا واضح کر کے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے اس دن تک شک میں رہیں گے جب تک کہ اچانک ان پر جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. اچانک یہاں پہ بختہ تن کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے. اور کیوں اچانک ان پر وہ گھڑی آئے گی؟ یہاں تک کہ انہیں جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. تو یہ جو بختہ تن ہے یہی اس کا روٹ ہے, با غین اور تا, یہ اس کا روٹ ہے. اور اچانک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دوسری بات کہی کہ او یاتیہم عذاب یوم اقیم, یا ان پر جو ہے وہ منحوس دن کا عذاب آئے گا. اقیم کے معنی کیا ہے؟ عین قاف میم جو ہے اقامہ, یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا بانج کے لیے, بانج. اور اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ایسا دن جس میں کوئی کوشش جو ہے وہ کارگر نہ ہو, ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے, ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ وہ عورت جو بانج ہو تو اس کے ہاں تو اولاد نہیں ہوتی نا, اور ایسا دن جس کے بعد رات دیکھنی نصیب ہی نہ ہو, جس میں کوئی خیر ہی نہ ہو, بربادی ہی بربادی ہو, تو اس کے لیے اقیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انکار کرنے والے جو ہیں یہ شک سے نکلیں گے نہیں یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور یا پھر یہ جو ہے قیامت کی گھڑی آ جائے گی. الملک یومئذ للہ, اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ الملک, ملک نہیں کہا, الملک. تو اس دن جو ہے بادشاہی اللہ کی ہوگی, اور اللہ جو ہے جب بادشاہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ یحکم بینہم, وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. فی جنات النعیم, نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ جنت میں جانے کی جو ہے یہ کنجی ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ زندگی کے اندر انقلاب آئے, پھر انسان شرک کرنا چھوڑ دے, پھر انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل, اچھے عمل. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اتنے میں ان کی ایک لونڈی آئی اور اندر جانے لگی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک دوات رکھی ہوئی تھی سیاہی والی, لونڈی کا پاؤں اس کو لگا, دھکا لگا, اور سیاہی جو تھی ظاہر ہے الٹی ہو گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو کیسے چلتی ہے؟ وہ بولی جب راستہ نہ ہو تو کیوں کر چلوں. یہ سن کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا جا, میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. پاس ہی آپ کے ایک دوست بیٹھے تھے عبداللہ بن محمد, تو انہوں نے کہا کہ اس لونڈی نے آپ کو ستایا اور آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے نفس کو راضی کر لیا کہ میں اس کو جو ہے اس کی جو غلطی ہے اس پر آزاد کر دوں, کیونکہ جب غصہ آتا ہے اور غصے کو پی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ ہے اصل بات کہ لوگ کیا کرتے تھے, عملے صالح کرتے تھے. تو ہم کیا کہتے ہیں, غصہ آیا تھا اسی لیے تو غصے میں جو ہے وہ میں نے پھر مارا, غصہ آیا تھا اسی لیے تو میں نے غصے میں جو ہے یہ زیادتی کی, تو اس لیے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا تھا تو میں نے جو ہے وہ گالی گلوچ کر لیا, میں نے غصے میں غیبت کر لی, میں نے غلط باتیں کہہ دی. تو عمل صالح کیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, اپنی زبان کو کنٹرول کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ حسن عمل کرنا, جس میں عبادات بھی آتی ہیں, معاملات بھی آتے ہیں اور اخلاق بھی آتا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے, نعمتوں بھری جنتیں ہیں. اب دوسرا انجام جو ہے وہ دوسرا کردار کیسا ہے کفر کرنے والوں کا, والذین کفروا, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلایا, فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. مہین ہا و نون اور ہا کے اوپر پیش ہو تو رسوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اگر زبر ہو تو اس کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن جو ہے وہ عذاب ہے. تو دو کردار ہیں پیچھے آپ نے پڑھے, یہاں پہ دو انجام بتائے جا رہے ہیں, اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کن لوگوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے, یہ نعمتوں بھری جنت اور یہ رب کی رضا اور یہ باغات اور یہ جنت جو ہے یہ ایسے نہیں ملتی, خواہشات سے نہیں ملتی, جب تک کہ اس کے لیے جو ہے وہ حسن عمل نہ کیا جائے, جب تک کہ اپنے ایمان کو اپنے عملوں سے سچا ثابت نہ کیا جائے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کی بادشاہی ہوگی, اللہ جج ہوگا, اللہ کے فیصلے ہوں گے, اور اللہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, اخلاص ہے یا ریاکاری ہے, ایمان ہے یا کفر ہے. اللہ صرف ظاہر کو ہی نہیں دیتا, اللہ صرف ظاہر کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. تو اللہ ضرور اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, واقعی ان کے دل اللہ کے آگے جو تھے وہ جھک گئے تھے, اللہ کے آگے یہ مطیع ہو گئے تھے. تو اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح رکھنے والے لوگوں میں شامل کر لے. آیت نمبر 58 سے 64 تک ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کی بشارت دی گئی ہے, خوشخبری دی گئی ہے, اور اللہ کی صفات سے کائنات سے دلائل دیے گئے ہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, فی سبیل اللہ, اخلاص کے ساتھ, توحید کے لیے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, ڈالر کے لیے نہیں, کسی حسین عورت سے شادی کرنے کے لیے نہیں, تجارت کے لیے نہیں, اپنے برائٹ فیوچر کے لیے نہیں, بلکہ فی سبیل اللہ, اللہ کی خاطر ہجرت کی. آپ یہاں پر کیوں آئے, آپ ضرور اس پہ سوچیں. اور یہاں پر رہنا ایک ہی شکل میں جائز ہے, اور وہ یہ نیت کر لیں کہ اس سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, ثم قتلوا, نمبر دو, پھر قتل کر دیے گئے. انہوں نے پھر کیا کیا کہ پھر اللہ کی خاطر وہ مار دیے گئے, او ماتو, یا وہ مر جائیں, لا یرزقنہم اللہ, اللہ ان کو جو ہے وہ ضرور با ضرور جو ہے وہ رزق عطا کرے گا, البتہ اللہ ان کو رزق دے گا, کیسا, رزقن حسنا, بہترین رزق, اللہ ان کو جو ہے وہ رزق حسن عطا کرے گا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر اپنا گھر, اپنا کاروبار, اپنا مال, اپنا سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ان کو رزق حسن جو ہے وہ عطا کرے, ان کو اللہ بہترین رزق جو ہے وہ دے. تو کیا معنی ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ رزق کے معنی ہے صرف یعنی کھانا پینا ہی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت, اللہ کے بے پایا انعامات, یہ اس کی جامع تعریف ہے, یہ اس کی جامع تعبیر ہے, कि अल्लाह ऐसे लोगों को जो है वो अपने अनगिनत इनामात से जो है वो नवाजेगा, और अल्लाह जो है वो इसकी कुदरत रखता है। وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور یقیناً اللہ ہی بہترین جو ہے وہ رازق ہے, خیر رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اللہ کی قدرت کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا, اللہ ضرور بضرور ان کو پہنچائے گا, داخل کرے گا, مدخلن داخل ہونے کی جگہ میں, یَرْضَوْنَهُ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے, جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ جنت ہے, اس سے مراد وہ مقامات ہیں جو کہ مہاجرین کو, ایمان لانے والوں کو ان کے اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کی یہاں پہ تعبیر کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی خوبصورت ہوگی, جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی, ما لا عین رأت, جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, جنہیں کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ تو اتنی خوبصورت نعمتیں, اتنی بہترین جگہ پر اللہ ان کو داخل کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے گھر کس لیے چھوڑا تھا, ان کو کیسا انعام ملنا چاہیے۔ حلیم جو ہے یہ برداشت کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ غم اور غصے کے وقت طبیعت کا اعتدال پر رہنا, اور جو سزا کے مستحق ہو تو اس کو سزا دینے میں تاخیر کی جائے, اس کو مہلت دی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایک طرف یہ اللہ کو یہ پتا ہے کہ لوگوں نے ہجرت کیوں کی تھی, نیت کیا تھی, دوسری طرف حلیم ہے اللہ, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑی بڑی قربانیاں اور خدمات جو ہے ان پر پانی پھیر دے, نہیں, بلکہ اللہ درگزر کرے گا اور ان کے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ ذالک, یہ تو ہے ان کا حال۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به, اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ ومن عاقب, اور جو شخص جو ہے وہ جو ستایا گیا ہے اور وہ کسی کو اتنی ہی اذیت دے, بے مثلی اتنی ہی ما عوقب جتنی کہ اس کو اذیت دی گئی, وہی اس سے, یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ بھی پھر اس کا بدلہ لیتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ فرمایا ثم بغیا علیہ, اور پھر اس پر زیادتی کی گئی ہو, لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ ان مظلوموں کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کاروائی نہ کر سکے ہوں, اور یہاں ان کا ذکر ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں۔ پہلے کن کا ذکر تھا؟ یہاں پہ دو طرح کے مظلوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ومن عاقب بمثل ما عوقب به, کہ اگر کسی پر کسی نے ظلم کیا تو اس نے بدلہ لے لیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ دوسرے کون ہیں؟ ثم بغیا علیہ, یعنی ان پر پھر زیادتی کی گئی, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ کسی پر کسی نے زیادتی کی تو انہوں نے بدلہ لے لیا, پھر ان پر زیادتی ہو رہی ہے اور اب انہوں نے بدلہ نہیں لیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ, تو اللہ ان کی جو ہے وہ ضرور مدد کرے گا۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں جیسے این کا جواب پتھر سے دینا اللہ کو پسند نہیں ہے, چنانچہ جتنی زیادتی ہو اتنا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے, کیونکہ مظلوم ہے نا, تو مظلوم بدلہ لے سکتا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے مظلوم کو کہا, مظلوموں کو کہا کہ آپ اپنی مدافعت کر سکتے ہیں, مظلوم تھے ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, تو یہاں پر ان کا مزید حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ तो इससे जो है वो क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह की तरफ से ये अहम ऐलान है कि पीछे आपने पढ़ा कि जान माल की मुसलमान मदाफियत कर सकते हैं, इसकी अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन कहा कि याद रखना ज्याती ना करना, क्योंकि जो भी मजलूम होगा फिर अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो यहां पर ये जो अहम हकीकत बताई गई है, जालिक मुफस्सरीन कहते हैं इसका ताल्लुक पीछे आयत नंबर 30 से है, पूरे जुमले का कायम मुकाम जालिक है। तो अगर जो है मुसलमान मुदाफियत करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो कुफार के साथ ज्यादती करें, और अगर कुफार ज्यादती करते हैं तो मुसलमान मुतमिन रहे लयंसुरन्नाहुल्लाह कि अल्लाह उनकी जरूर मदद करेगा। इन्नल्लाह लअफूवुन गफूर, अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ। अब यहां पर जो है अल्लाह ताला जो मदद करने वाला है उस सिलसिले में पहली दलील देते हैं। क्या बताते हैं कि लोग देखते नहीं हैं कि किस तरह अल्लाह जो है वो रात से दिन और दिन से रात निकालता है। वला जा वो लाम जी इस यूलेजू का रूट है, और तंग जगह में कोई चीज दाखिल करना, तंग चीज में कोई चीज दाखिल करना। तो रात से दिन और दिन से रात कौन निकालता है? अल्लाह ताला। तो जो अल्लाह ये कर सकता है तो वो बातिल पर हक की सुबह जो है वो तुलू कर सकता है। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दुनिया अंधेर नगरी नहीं है। तो तारीकी से मुराद क्या है? कुफर की तारीकी। जिस तरह रात की तारीकी को अल्लाह मिटाता है और दिन की रोशनी आती है, बिल्कुल इस तरह अल्लाह कुफर की तारीकी को मिटाकर ईमान की रोशनी से कायनात को रोशन करेगा। वह अन्नल्लाह समीउम बसीर, और अल्लाह जो है वो सुनता भी है और देखता भी है, यानी अल्लाह ताला देखने वाला सुनने वाला है। फिर आयत नंबर 62 में फरमाया ज़ालिका भी अन्नल्लाह हुवल हक्कु, ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, यानी अल्लाह हक है। वह अन्ना मा यदऊना मिन दूनी हुवल बातिलु, और वो सब बातिल है जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। आयत नंबर 62 सूरत अल हज, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। कौन? इनकी देवियां, इनके देवता, और जो जिनकी भी वो पूजा करते थे, तो वो तो झूठ है, वो बातिल है, अल्लाह हक है। वान अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और अल्लाह ही, अलीयु के मानी क्या है? ऊपर रहने वाला है। अल्लाह ही बालादस्त है, कबीर बुजुर्ग है, बहुत बड़ा है, बुलंद मर्तबा है, बड़ी ही उसकी जो है वो आला शान है। तो आयत नंबर 62 में यहां पर ये बात बताई गई है कि हक को कायम करना, बातिल को मिटाना, ये अल्लाह की शान है। फिर आयत नंबर 63 में अल्लाह की कुदरत की तरफ आयत नंबर 63 में अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा किया गया है, गौर व फिक्र की दावत दी है। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तू नहीं देखता? तरा जो है वैसे तो रा हमजा याद देखने के लिए आता है, लेकिन मुराद गौर व फिक्र करना। इंसान, क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह अनजला मिनस समाई, उतारता है आसमान से मा अन बारिश पानी, तस्बहू तस हो जाती है। स्वादवा हा जो है इसका मतलब होता है हालत की तब्दीली के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे रात के बाद सुबह हो जाती है ना, इसी तरह सुबह के वक्त अगर कोई अमीर है शाम के वक्त कोई गरीब हो जाए तो हालत की तब्दीली के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। बारिश होने से पहले जमीन कैसी होती है? बंजर। जमीन जो है बंजर होती है और जो ही बारिश होती है फतुस्बहु तो हो जाती है अल अर्दु जमीन मुखदर्रतन सरसब्ज। पीछे आपको मैंने सूरत कहफ में बताया था कि खा द्वाद रा जो है इसके मानी है सब्ज। खिजर अलैहिस्सलाम का नाम था ना ये खिजर, हमें बुखारी की हदीस से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था कि जाओ फलां मेरे बंदे से इल्म हासिल करो, तो उनका नाम खिजर था। तो मुखदर्रतन सरसब्ज रंग वाला, सब्ज स्याही माइल, ये इस्म फाइल है। तो जमीन की हालत कैसे बदल गई कि बंजर जमीन जो है अब वो सरसब्ज हो गई। तो यहां पर ये बात कही जा रही है कि अल्लाह की जब बरसाई हुई बारिश से खंडर और बंजर जमीन जो है, जो सूखी जमीन जो है वो यकायक लहलहा उठती है, बिल्कुल इसी तरह से वही की बारिश जो कि रहमत है। आप देखेंगे लोगों, तुम देखोगे कि अरब का बंजर रेगिस्तान वही की बारिश से फिर लोगों का इल्म इखलाक किरदार क्या होगा कि एक जो है वो अरब का इलाका गुलो गुलजार हो जाएगा, गुलिस्तान बन जाएगा। अरब का रेगिस्तान बंजर जमीन जो है वो वही इलाही से सैराब होकर लहलहा उठेगी। इन्ना अल्लाह लतीफ़ुन खबीर। हकीकत यह है कि अल्लाह लतीफ और खबीर है। लतीफ लफ्ज आपने पहले भी पढ़ा था, मेहरबान के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर दो बातें खास तौर पर पाई जाती हैं। नंबर एक, छोटी छोटी बातों तकालीफ का इल्म रखना, ख्याल रखना। नंबर दो, फिर वो तकालीफ जो है उनको जो है वो दूर करना, उनका अजाला करना। अब यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बड़ा लतीफ है, खबीर खूब जानने वाला है। इसके मानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीमो खबीर हैं, बारीक बीन हैं। एक दाना जो मिट्टी के अंदर जाता है, एक बारिश का कतरा जो जमीन के अंदर जाता है, तो किस तरह से बारिश और मिट्टी में मिलाप जब होता है तो बीज के अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है, नरम और नाजिक कोंपले जमीन को चीर फाड़ कर बाहर निकल आती हैं और फिर सब्जा हर तरफ लहलहा उठता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह खूब जानता है कि किस तरह से लोगों के दिलों की जो जमीन है इसमें ईमान के बीज जो हैं वो वही की बारिश के जरिए जो है वो सैराब होंगे और फिर लोग जो है वो मुसलमान होंगे और दीन जो है वो तरक्की पाएगा और बातिल जो है वो खत्म हो जाएगा, अंधेरी रात की तरह खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह इसके लिए तदाबीर करने वाला है। कौन जानता है कि मूसा जिनको पानी में डाला गया और जिसके खौफ से डाला गया, फिरौन के खौफ से, और वो मूसा जो है वो फिरौन के घर में जाकर परवरिश पाएगा? कोई नहीं जान सकता इस बात को ना, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है? अल्लाह लतीफ है, अल्लाह खबीर है। फिर इसी तरह जो है वो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि बाज ऐसे अल्लाह के इरादे हैं किसी को भी पता नहीं चल सकता और अल्लाह जो है वो उनको पूरा करता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. مجھے یہ آیت بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے. قرآن میں بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غافل دلوں کو جھنجھوڑتا ہے, نیند کے ماتوں کو جگاتا ہے, دنیا سے محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے, اور اشرف المخلوقات حضرت انسان اسے بتاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے لہو وہ اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ کی ملکیت ہے, وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں, ساری مخلوقات کا مالک, دنیا کا مالک, آخرت کا مالک. آگے پیچھے آپ نے پڑھا نا, الملک یومئذ للہ یحکم بینہم. تو جب سب کچھ اللہ کا, تو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کیوں نہ بنائیں, ہم کیوں نہ اللہ کے آگے جھک جائیں, اس دل پر, اس جسم پر اللہ کی حکومت قائم کریں. ہم ایک ہی فکر اپنے دلوں کے اندر پالیں کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے, ہم اللہ کے حقوق ادا کریں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے, تو میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے دو بار دعا کی, دونوں دعائیں فوراً قبول ہو گئیں, پھر میں نے اس کے بعد دعا نہیں کی. کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے اس ڈر سے کہ کہیں میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان دنیا میں جو دعا مانگتا ہے اس کی قبولیت کے تین درجے ہیں. ایک تو یہ کہ جس شکل میں آپ نے مانگی ہے فوراً اللہ اس کو اسی طرح قبول کر لے. دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دے, بڑی مصیبت کو ٹال دے. تیسری شکل یہ ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, لیکن آخرت میں اللہ اتنا اس کا اجر دے گا کہ انسان اس دن یہ تمنا کرے گا جب دیکھے گا کہ جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی, تو اتنا زیادہ ان کا اجر ہے, تو انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو آپ دیکھ لیں کہ میں سوچ رہی تھی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس بات نے بڑا ہی میرے دل پر اثر کیا. میں نے کہا ساری زندگی اسی اداسی میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا, آخر اللہ تو کب قبول کرے گا, میں تو اتنی دکھی, اتنی پریشان, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مصیبت وہ مصیبت, میں مر گئی لٹ گئی, مجھ سے بڑھ کر مصیبت پریشان زدہ اور کون ہو سکتا ہے, اور کبھی تو ایمان ہی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. ابھی میری یہاں پہ ایک عورت ہے, کبھی کبھی ملا کرتی ہے, اس کو طلاق ہوئی بھی ہے, بڑی دکھی سی عورت لگتی ہے ویسے تو, اور ویسے مطلب بظاہر دیکھیں تو کوئی ایسی یوں وجہ نہیں لگتی, تو ایسے اسے بات چیت ہوتی رہتی ہے. اس کو میں بہت سمجھاتی ہوں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آئے, قرآن کی طرف, اسلام کی طرف, خوبصورت بھی بہت ہے. تو بہرحال انسانوں پہ آزمائشیں آتی ہیں, تو مجھے بڑی پریشانی اور حیرت ہوئی. کہنے لگی آج کل تو میں نے نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں, میں اب ناراض ہو گئی ہوں, بس اللہ میرے حالات نہیں بدلتا, میں بڑی بد نصیب ہوں, میں ایسی ہوں, میں ویسی ہوں. بہت ہی عجیب و غریب, اور وہ بہت ہی غلط باتیں کر رہی تھی. اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو جو ہے وہ یہ کیسا انداز ہے نا, باغیانہ انداز, اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے نا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے. تو بہرحال ایک طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسری طرف میں اور آپ ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو اور سنانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ امام بخاری نے ابو معشر ایک شخص تھا اس سے اپنے قصور کی معافی چاہی. انہوں نے کہا کہ آپ نے امام بخاری کیا قصور کیا؟ امام بخاری نے کہا ایک دن تم حدیث بیان کرتے تھے, और अपने सर और हाथों को हिलाते थे। ये हाल देखकर मैं मुस्कुराया था, मैंने तबस्सुम किया था। आप सोच सकती हैं कि कोई हदीस सुना रहा है और सुनाते हुए अपने हाथ और सर हिला रहा है, अब ये देखकर इमाम बुखारी मुस्कुराए। और बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुहासबा किया कि मैं क्यों मुस्कुराया था, और उस शख्स से माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह तुम पर रहम करे। इसे कहते हैं अल्लाह की अतात। कि आप कहते हैं आप मुस्कुराने को तो कुछ समझते ही नहीं ना, आंखों के इशारे को। किसी ने, कोई औरत गुजरी, अब उसने लंबी सी कमीज पहनी हुई है, आजकल आपको पता है क्योंकि आप बहुत ही जमाना साज हैं, आपको पता है उसने लंबी कमीज पहनी है, आप कहती हैं हूं, आप मुंह से कुछ भी नहीं कहती, आप आंखों से इशारा करती है, देखना तो सही जरा, किसको पता ही नहीं कि आजकल फैशन क्या चल रहा है। और अब आप देखें कि आंखों के इशारों से गुनाह करते हैं, अपनी गर्दन को मोड़ कर करते हैं, मुस्कुराहट से करते हैं, जबान से करते हैं, हाथों से करते हैं, क्या करते हैं? याद रखें, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन्नल्लाह लहुवल गनीयुल हमीद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, बेशक वही गनी और हमीद है। गनी कौन होता है? ऐसी जात जो किसी की मोहताज ना हो। तो असल में गनी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो आइए अपने दामन को, अपने हाथों को अल्लाह के आगे फैलाएं। जूते का तस्मा टूट जाए, छोटी से छोटी चीज चाहिए हो या बड़ी चीज चाहिए हो, अल्लाह से मांगे, और अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। और अल्लाह उठे हुए हाथों को और फैले हुए दामन को कभी महरूम खाली नहीं लौटाता, ऐसे लोगों को कभी महरूम नहीं करता। तो अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, जो कुछ भी हैं वो हम अल्लाह के सामने रखें। और अल्लाह हमीद है, तारीफ और हम्द उसी के लिए है, वो अपनी जात में आप महमूद है, खा कोई अल्लाह की हम्द करे या ना करे। और याद रखें, अगर आप मजलूम हैं, आप परेशान हाल हैं, तो क्या करना है कि यानी माफ कर दें तो ज्यादा अफजल है, अगर बदला लेना चाहते हैं तो उतना ही कि जितना जुल्म किया गया है, और अगर बदला लेते वक्त आपने ज्यादती कर ली तो आप जालिम बन गई तो दूसरा मजलूम हो गया। अल्लाह किसकी मदद करेगा जो मजलूम है? आपने पीछे पढ़ा ना, और याद रखें, वत्तकी दावत अल मजलूम फइन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। के मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह और उसकी बद्दुआ के दरमियान जो है कोई हिजाब नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह की बंदगी करना है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।